आहान और चाहत की जिंदगी में उनका बच्चा आ गया था, पर साथ ही उनके ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई थी। आहान के दुश्मनों के लिए अब आहान को टारगेट करना और भी आसान हो गया था। उसके दुश्मनों में एक अक्षरा गोयनका भी थी, जिसने कार्तिका के छोटे भाई बहनों को किडनैप करके उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अक्षरा चाहती थी कि कार्तिका उसे आहान और चाहत का बच्चा ला कर दे। हालांकि इस काम के लिए अक्षरा ने कार्तिका को एक महीने रुकने को कहा था, क्योंकि चाहत का बच्चा अभी सिर्फ 10 दिन का था। इतनी छोटे बच्चे को उसकी माँ से दूर करके संभालना अक्षरा के लिए पॉसिबल नहीं था। अक्षरा के मना करने के बावजूद अपने भाई बहनों के लिए कार्तिका इस काम को करने के लिए पहले ही आहान के विला पहुंच चुकी थी। मैं जानती हूं मैं सही नहीं कर रही हूं। ये दुनिया का सबसे बुरा काम होता है जब आप किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देते हो, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, प्लीज मुझे माफ कर देना, कार्तिका ने भावुक स्वर में कहा। उसने खुद को मजबूत किया और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लिए थे। आहान ने अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए विला की सिक्योरिटी भी टाइट करवा ली थी। कार्तिका जैसे ही घर के आगे पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया था। गार्ड ने एक नज़र कार्तिका की तरफ देखा। कार्तिका आज ही पार्टी अटेंड करने के लिए आहान के विला में आई थी। आहान ने उसका सिक्योरिटी चेक भी नहीं करवाया था, इसका मतलब वो उसकी फैमिली मेम्बर थी। फिर भी इस वक्त उसका वापस आना गार्ड को खटक रहा था। मैडम, आप इतनी रात को अंदर नहीं जा सकती हैं, वैसे भी सब सो चुके हैं, प्लीज़ आप कल आ जाइएगा, सिक्योरिटी गार्ड ने काफ़ी नम्रता से कहा। कार्तिका ने अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल किया, अंदर ही अंदर उसे भी बहुत डर लग रहा था और इस वक्त उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं। कार्तिका ने जवाब में कहा, मैं कल आ जाती लेकिन मेरा मोबाइल अंदर रह गया था, मैं आयुष की फ्रेंड हूँ, आप चाहो तो उसे कॉल करके पूछ सकते हो, मैं अपना फ़ोन लेने के बाद वापस चली जाऊँगी। सिक्योरिटी गार्ड ने एक नज़र दूसरे गार्ड की तरफ देखा, उसने आंखों ही आंखों में कार्तिका को अंदर जाने की इजाज़त देने को कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं, वैसे भी आहान सर ने कुछ लोगों के नाम ऐड किए थे जिन्हें बिना किसी सिक्योरिटी चेक के अंदर आने दिया जाए, उनमें आपकी फ़ोटो और डिटेल्स भी भरी गई थीं। आहान को आयुष के चलते कार्तिका पर इस कदर यकीन हो चुका था, ये देखकर कार्तिका को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसका धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। अगर अक्षरा उसके भाई बहनों को किडनैप नहीं करती तो शायद ही कभी कार्तिका ये घटिया कदम उठाने के लिए हाँ कहती। थैंक यू सो मच, कार्तिका ने मुस्कुराकर कहा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा लिए थे। उसने मन ही मन कहा, सॉरी कहना या आपने किए पर पछतावा करना बहुत छोटी चीज़ होगी, क्योंकि मैं ये गलती जानबूझकर करने जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना आयुष, आहान सर, शायद मैं आपके विश्वास के काबिल नहीं हूँ। कार्तिका ने खुद को मजबूत किया, क्योंकि इस तरह वो इमोशंस में आकर कोई गलती नहीं कर सकती थी, बात यहाँ उसके भाई बहनों की जान की थी। कार्तिका के कदम सीधे आहान और चाहत के कमरे की तरफ पड़ रहे थे, जो कि सेकेंड फ्लोर पर बना हुआ था। अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे कार्तिका अंदर कदम रख रही थी, उसके साथ ही लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो चाहत और आहान के कमरे के आगे थी। रूम का दरवाज़ा खोलने के बजाय चाहत पास ही के कमरे में गई जो खुला था। आहान का विला काफ़ी बड़ा था, ज़्यादातर कमरे खाली ही थे, लेकिन उन्हें काफ़ी मेंटेन करके रखा गया था। कार्तिका जिस कमरे में गई थी उसकी बालकनी और चाहत के कमरे की बालकनी अटैच थी। वो बालकनी के जरिए कमरे के अंदर पहुँच गई थी। कार्तिका ने एक नज़र आहान और चाहत की तरफ देखा, जो एक दूसरे में सिमट कर सोए हुए थे, तो वहीं चाहत का एक हाथ अपने बच्चों के ऊपर था। कार्तिका ने अपनी आंखें कसकर बंद की और मन ही मन कहा, मुझे पता है तुम कर लोगी और तुम्हें अपने भाई बहनों के लिए करना ही होगा। कार्तिका ने बहुत सावधानी से चाहत का हाथ साइड में किया और फिर धैर्य को अपनी गोद में उठा लिया था। जाने से पहले उसने एक नज़र आहान और चाहत की तरफ देखा, जो लेट सोने की वजह से बेफिक्र से सोए हुए थे। कार्तिका ने एक बार फिर से धीरे से उन्हें सॉरी कहा और फिर बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब अलार्म के साथ आहान की नींद टूटी। उसने जल्दी से अपने मोबाइल का अलार्म बंद कर दिया ताकि चाहत की नींद डिस्टर्ब ना हो। अलार्म बंद करने के बाद अपनी आदत के मुताबिक आहान ने चाहत के फोरहेड पर किस किया। फिर वो अपने बच्चों के पास आने लगा, लेकिन उसने देखा धैर्य की जगह एक पिलो रखा हुआ था जिस पर चाहत का हाथ रखा था। ये देखकर आहान के चेहरे के भाव तुरंत ही सर्द हो गए थे। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंद हो गई थीं और वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए खुद से बोला, आई होप धैर्य बिल्कुल ठीक हो और मॉम के पास हो, वरना आई डोंट नो मैं क्या कर जाऊंगा। आहान तेज कदमों से चलकर तुरंत शिवानी के कमरे के पास गया तो रूम में कोई नहीं था। वो जल्दी से नीचे गया। इस वक्त उसके दिल में हजारों बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं धैर्य को कुछ होना गया हो। आहान ने देखा शिवानी किचन में थी। उसने शिवानी को देखते ही कहा, आई नो मॉम, आप ये सब डॉल के कंफर्ट के लिए कर रही हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उठने के बाद उसने धैर्य को अपने पास नहीं देखा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी?
आहान परेशानी में काफी बेचैन हो गया था। आहान की बात सुनकर शिवानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम क्या कह रहे हो आहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और धैर्य को मैं कमरे में से लेकर क्यों आऊंगी? तुम खुद सोचो, रूम में तुम और चाहत एक साथ थे, मैं अपनी प्राइवेसी को मैं क्यों इंटरप्ट करूंगी बेटा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे रूम में नहीं है, आहान ने डर से आंखें बड़ी करके कहा। शिवानी आहान को कुछ कहती उससे पहले आहान दौड़कर पूरे घर में इधर उधर बच्चों को देखने लगा कि कहीं किसी हाउस हेल्पर या आयुष ने बच्चों को लिया होगा, पर धैर्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। आहान पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था और शिवानी उसके पीछे पीछे जा रही थी। शिवानी ने घबराहट से भरी आवाज में कहा, बेटा उसे कोई नहीं लेकर आया है, आखिरी बार हमने उसे तुम्हारे कमरे में ही देखा था, हमारे घर में भी कोई नहीं आया था, फिर धैर्य कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं पता मॉम कहाँ गया है, लेकिन उसे दमना जरूरी है, कुछ ही देर में चाहत उठ जाएगी और उसने अपने पास में बच्चों को नहीं देखा तो आई डोंट नो मैं उसे कैसे संभालूंगा। वैसे भी कल रात उस घटिया शख्स के कॉल के बाद से वो कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। मैं उस राजवीर शर्मा को छोड़ूंगा नहीं, अगर उसने मेरे बेटे को कुछ किया तो, आहान गुस्से में चिल्ला रहा था। वो सीधा सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया। उसे इस तरह शिवानी के साथ दौड़ता देखकर सारे गार्ड्स लाइन में लग गए थे। उन्हें देखते ही आहान गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, कल रात हमारे सोने के बाद यहाँ कोई आया था, रात को गेट की सिक्योरिटी कौन देख रहा था? आहान को इतने गुस्से में देखकर उन सबके चेहरों पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जवाब दे या फिर जो भी सिक्योरिटी गार्ड रात को दरवाजे पर था वो आगे आकर अपनी बात रख सके। उनमें से किसी के भी कोई जवाब न देने पर आहान ने फिर से तेज आवाज में कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए, रात को यहाँ गेट की सिक्योरिटी कौन कर रहा था? रात वाले सिक्योरिटी गार्ड आ गया है, वो चार आदमी थे, उनमें से दो लोगों ने ही आपसी सहमति से कार्तिका को अंदर आने को कहा था।
उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने आगे जाकर नजर झुकाकर आहान से कहा, रात को वो लड़की आई थी जो आयुष सर की फ्रेंड थी, आपने कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे जिन्हें बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर जाने की परमिशन दी जाए, उनका भी नाम था, उन्होंने कहा कि वो अपना मोबाइल भूल गई है। कार्तिका का नाम सुनते ही आहान के चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। उसने कसकर आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर गार्ड से पूछा, वो वापस कब गई थी, क्या उसके साथ कोई बच्चा था? वो अकेले आई थी और जाते वक्त उनके साथ में एक बड़ा सा सूटकेस था, उन्होंने कहा कि उसके अंदर कुछ गिफ्ट आइटम है जो आयुष सर ने उन्हें दिए हैं। गार्ड ने नजर झुकाकर धीरे से कहा, पागल हो गए हो तुम, वो मेरे बच्चे को सूटकेस में बंद करके ले गई और तुम्हें चेक तक नहीं किया। आहन ने गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड की कॉलर पकड़ ली थी। वहां इतना हंगामा देखकर आयुष भी तुरंत नीचे आ गया था। उसने आहन की कुछ बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आयुष जल्दी से आहन को गार्ड से दूर करते हुए प्लीडिंग वॉइस में बोला, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी भाई, कार्तिका ऐसा नहीं कर सकती है, आप तो जानते हैं वो कितनी अच्छी है, आप खुद उससे बात करने के लिए गए थे। गुस्से में आहन को कुछ नजर नहीं आता था, यहां तो बात उसके बच्चे की थी। उसने आयुष को खुद से दूर धकेला और जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी गलती है जो मैंने जल्दबाजी दिखाई, जबकि चाहत कहती रही कि वो लड़की उसे अजीब लगती है, तो आप भाभी की बातों में आकर कार्तिका पर सवाल उठा रहे हैं जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आयुष ने शक्ति से कहा। वो कार्तिका के लिए स्टैंड ले रहा था, लेकिन यहां कार्तिका का स्टैंड लेकर वो खुद गलत साबित हो रहा था। तो तुम उसके लिए अपनी भाभी पर सवाल उठाओगे, तुम्हें पता भी है उसने क्या किया है, वो धैर्य को हमारी नाक के नीचे से किडनैप करके ले गई और तुम उसका फेवर ले रहे हो, आहन ने गुस्से में आयुष पर चिल्लाकर बोला। मैं किसी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, आप भी बिना किसी सबूत के उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, आयुष ने उसी सख्ती से जवाब दिया। शिवानी ने अपनी जिंदगी में इतने सालों में पहली बार आहन और आयुष को आपस में झगड़ते हुए देखा था, जबकि वो दोनों भाई एक दूसरे की ताकत थे। ये सब कार्तिका की वजह से हो रहा था, ये देखकर शिवानी को और भी बुरा लग रहा था। इससे पहले कि आहन अपने गुस्से में आपा खोकर आयुष पर हाथ उठाता या कुछ गलत करता, शिवानी उसके बीच में आ गई थी और वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगे, क्या हो गया है तुम दोनों को, हमारे घर का बच्चा गायब है और तुम दोनों अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ की बातों के चलते एक दूसरे से लड़ रहे हो, फिलहाल हमारे लिए किसी को सही या गलत साबित करने से ज्यादा जरूरी बच्चों को ढूंढना है। आयुष की नजरें झुक गई थी जबकि आहन आयुष को इस तरह घूर कर देख रहा था। वो वार्निंग टोन में बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमारा वहम निकले, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो लड़की सच में मेरे बच्चे को लेकर कहीं गई है तो उसकी वजह तुम भी रहने वाले हो, तुम्हारा ही बहाना बनाकर उसने इस घर में कदम रखा था। आयुष को खरी खोटी सुनाने के बाद आहन उसे रूम से बाहर निकाला और अपनी गाड़ी लेकर जाने लगा। उसने अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और आदमियों को अलर्ट मोड पर छोड़ दिया था। इस वक्त उसका रास्ता सीधे सीधे कार्तिका का घर था, तो वहीं आयुष आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां खड़ा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़की को उसने दिलोजान से चाहा था वो उसे इस तरह धोखा देने के लिए ही उसके करीब आई थी।